समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
पूरे हफ्ते की दौड़ धूप के बाद लीजिए रिलैक्स करवाने के लिए वीकेंड आ ही गया। अब दो दिन चैन के बंसी बजाओ, सुकून की सांस लो और कुछ आउटिंग, कुछ मनोरंजन का प्लान बनाकर खुद भी खुश हो लो और परिवार में भी खुशियां बिखेर दो। देखिए मेरे साथ साथ मेरी साथी भी खुश हो रही है वीकेंड के बारे में सोच सोच कर, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि खुशियां बिखेरने का और खुशियों को समेटने का ये एक वक्त होता है जो वीकेंड होता है। और देखा जाए तो सोचने में तो वीकेंड कुछ ऐसा ही नजारा देता है, लेकिन इसी वीकेंड का भाई एक दूसरा पहलू ये भी है कि वीकेंड शुरू होने से पहले ही पूरे हफ्ते के पेंडिंग काम क्यों लगाए खड़े होते हैं और उन कामों को निपटाने में वीकेंड के दो दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता।
बिल्कुल, स्पेशली फॉर वुमेन। अरे भाई, मशीन लगाना है, इतने कपड़े धोना है, कपड़ों का पुलंदा बढ़ता चला जा रहा है।
एक्चुअली घर के काम भी इतने सारे पेंडिंग होते हैं और बाहर के काम भी होते हैं। तो यही वो वाला वक्त होता है सायरा, जहाँ हम कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू, ये वाली कहावत लागू होती है।
यस, नॉनदलेस एटलीस्ट पीपल हु आर इन दिल्ली, क्योंकि बाकी तो जितने शहरों में आप हम लोग को सुन रहे हैं वहां तो मौसम सुहाना है। दिल्ली ही के लोग थोड़ा सा कड़कड़ाती ठंड से ठिठुर रहते, बट आज मौसम साफ होने की काफी संभावना है।
संभावना है, लेकिन हवा में और पानी में ठंडक बहुत ज्यादा है।
या बट इफ प्रॉब्ली द डे इज सनी, आई एम श्योर दैट पीपल विल थ्रॉन्ग आउटसाइड, गो टू पार्क्स एंड यू नो जस्ट बास्क इन द सन
एंड एंजॉय देयर वीकेंड ऑल्सो।
यस, ऑन दैट नोट वी वेलकम यू ऑल टू अ वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे।
जी, आप भी अपने पूरे हफ्ते के रुके हुए काम निपटाइए, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम भी बिताइए, बस जरा सी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। तो फिलहाल जैसा कि सायरा ने कहा कि वक्त है FM 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। सायरा मुस्तफा के साथ आज मैं हूं आपके साथ नईम अख्तर।
आदाब, नमस्कार एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड एज नईम सेड दैट इन दिस शो ऑफ कोर्स वी ब्रिंग यू एन अमलगमेशन ऑफ रिपोर्ट्स, द लेटेस्ट हेडलाइंस एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग मेट्रो न्यूज सेक्शन, ताकि जान लीजिए आप भी अपने शहर में क्या कुछ चल रहा है खास। एंड वील टेक अ लुक एट द वेदर अपडेट फ्रॉम ऑल द मेट्रो सिटीज। और जो लास्ट सेगमेंट जिसका आपको और हमको दोनों को इंतजार रहता है, दैट इज ऑफ कोर्स इन विच वी रिमेंबर सम ऑफ द पर्सनालिटीज हु ईदर हैव देयर बर्थ और डेथ एनिवर्सरीज और देयर बर्थ डेज टुडे। और आज तो बहुत ही बड़े बड़े कुछ नाम हैं, तो
दिग्गज नाम है।
एब्सोल्युटली, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस।
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। ये देश के गांवों के सशक्तिकरण और सुशासन यात्रा में महत्वपूर्ण कदम होगा। संपत्ति कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में वितरित किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड का अधिकार प्रदान करके ग्रामीण भारत में आर्थिक बदलाव को बढ़ावा देना है।
The International Monetary Fund or IMF has retained its growth projection for India at 6.5% for the next two financial years, that is 2025-26 and 2026-27, holding that it is in line with potential. The IMF stated this in its latest update of World Economic Outlook released yesterday. According to IMF, India maintains the fastest growth rate among the world's largest economies. Meanwhile, global growth is projected at 3.3% both in 2025 and 26 as per the IMF, and below the historical average of 3.7%, broadly aligned with potential growth that has weakened substantially since the pandemic. The 2025 forecast remains largely unchanged from the October 2024 World Economic Outlook, with an upward revision for the US, balancing declines in other major economies.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा और सुरक्षा के मौजूदा वातावरण में बढ़ते तनाव के बीच देश की आक्रामक और रक्षात्मक कार्यवाही को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में 2024 को नेवल सिविलियंस के रूप में मनाने से संबंधित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के रक्षा बलों की जटिलताएं समय के साथ बढ़ रही हैं। श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सेना बड़े जनादेश और जटिल ढांचे के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देशभक्ति, साहस और अनुशासन सैनिकों को देश की रक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक संपन्नता समुद्री सुरक्षा से जुड़ी हुई है और क्षेत्रीय जल सीमा की रक्षा करना, आवागमन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और समुद्री मार्गों को बनाए रखना आवश्यक है। श्री सिंह ने आज के समय में साइबर सुरक्षा को समुद्री सुरक्षा का महत्वपूर्ण पहलू बताया और कहा कि इससे उपेक्षा करना घातक हो सकता है।
The budget session of Parliament will commence from the 31st of this month. The session will commence with President Draupadi Murmu addressing a joint sitting of the Lok Sabha and the Rajya Sabha on the 31st of January. Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Union Budget on the 1st of February. The first part of the budget session will be held from the 31st of this month to 13th of February, while the second leg of the budget session will be held from 10th of March to 4th of April.
अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर कल से राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव से संबंधित संघीय कानून को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चीन के स्वामित्व वाले इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अमेरिका स्थित किसी मालिक को बेचे जाने तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। अदालत का कल का ये सर्वसम्मत फैसला कांग्रेस और न्याय विभाग के इस रुख के अनुरूप है कि चीनी कंपनी बाइटडांस के स्वामित्व वाला टिकटॉक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अमरीकी सांसदों ने अदालत में दलील दी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस ऐप का इस्तेमाल दुष्प्रचार करने और उपयोगकर्ताओं के साथ हेर फेर करने के लिए कर सकती है। पिछले साल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें कहा गया था टिकटॉक को चीन स्थित मूल कंपनी से अलग हो जाना चाहिए या अमरीका में बंद कर देना चाहिए। इस बीच टिकटॉक ने विनिवेश का विरोध करते हुए दावा किया है कि यह व्यावसायिक और कानूनी रूप से अव्यवहार्य है। कल से 17 करोड़ अमरीकियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला टिकटॉक अब संयुक्त राज्य अमरीका में ऐप स्टोर में डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं है। टिकटॉक पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू करने में अमरीका भी भारत के साथ शामिल हो गया है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस और नीदरलैंड सहित कई अन्य देशों ने इस ऐप पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगाया है कि चीन जासूसी के लिए टिकटॉक का इस्तेमाल कर सकता है।
And now news from the Mahakumbh. Well, the ongoing Mahakumbh at Prayagraj in Uttar Pradesh is drawing a record number of devotees, all converging at the Trimeni Sangam to take the holy dip. This grand congregation of millions of people has not only brought immense pride to the city, but also provided a major boost to its local economy and businesses. More details from our correspondent.
Industries such as hospitality, food, woolen materials, blankets, quilts, mattresses and electronics have witnessed a 30-40% growth in sales. It is expected to reach 50% as the grand event Mahakumbh Mela progresses. Even though the Mahakumbh has just begun, retail and wholesale businesses in the city have already seen a 2-3-fold increase in sales. Whether it is the hotel industry, retail businesses or the textile industry, all sectors have seen significant growth in the past week. Traders are hopeful of even more sales on the day of Mauni Amavasya. As the Mahakumbh progresses, further growth is expected in trades. The Mahakumbh 2025 is expected to generate a revenue of 2 lakh crore rupees. Anand Kumar for Akashvani News, Prayagraj.
Mahakumbh 2025 se juda har update ab aapko milega Kumbhvani par. Kumbhvani, ji haan, Mahakumbh ko samarpit Akashvani ka vishesh channel. सुनिए हर दिन तीन कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
और अब खबरें खेल जगत से। खो खो विश्व कप 2025 में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें आज सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण प्रदर्शन किया और सभी मुकाबलों में जीत हासिल की। एक रिपोर्ट।
भारतीय पुरुष टीम ने कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में श्रीलंका पर 140 के स्कोर से शानदार जीत हासिल की। टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अकेले पहले टर्न में 58 अंक हासिल किए। श्रीलंका की टीम अनेक प्रयासों के बावजूद भारत के मजबूत खेल की बराबरी नहीं कर सकी। तीसरे टर्न में भी भारत ने अपना प्रदर्शन जारी रखा, जो चौथे टर्न में भी जारी रहा। पुरुष वर्ग में हुए अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में ईरान ने केन्या के खिलाफ 86-18 के स्कोर के साथ शानदार जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका ने निर्णायक मैच में इंग्लैंड को 58-38 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। नेपाल ने बांग्लादेश पर 67-18 के अंतिम स्कोर के साथ जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। इस बीच भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 109-16 के बड़े स्कोर से हराया। कप्तान प्रियंका इंगले के नेतृत्व में टीम ने मैच के चारों टर्न में अपना दबदबा बनाए रखा। भारतीय महिला टीम ने टूर्नामेंट में लगातार चौथे मैच में 100 अंकों का आंकड़ा पार किया। महिला वर्ग में युगांडा ने न्यूजीलैंड पर 71-26 के स्कोर के साथ जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। दक्षिण अफ्रीका ने केन्या के खिलाफ एक करीबी मुकाबले में 51-46 से जीत हासिल कर अगले दौर में प्रवेश किया। नेपाल ने ईरान को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 103-8 के स्कोर से मात दी। आज सवेरे के लिए अभिषेक कपिल।
और आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी हुई कुछ खबरें हम शामिल करें, उससे पहले सायरा के पास कुछ और खबरें
इन विमेंस हॉकी इंडिया लीग दिल्ली एसजी पाइपर्स एंटर्ड देयर विनलेस रन विद 2-0 विक्ट्री अगेंस्ट द टेबल टॉपर्स जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब एट द बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला यस्टरडे एंड लेट्स हियर मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
With the men taking a break, the Women's Hockey League took center stage at the Birsa Munda Hockey Stadium in Raurkela yesterday, and the struggling Delhi SG Pipers, who had lost both their matches and scored no goals till now, sprung a surprise by taking down table toppers Surma Hockey Club 2-0 in a spirited display. While Delhi began strongly hoping to put their goalless streak behind, Surma held firm as the first quarter ended goalless. Delhi finally broke the deadlock with a nicely taken penalty corner in the 25th minute as Sangeeta cleverly deflected Stephanie DeGroof's shot into the net. Though Surma pressed hard to find the equalizing goal, it was Delhi who added to their lead through star striker Deepika at the start of the final quarter as her powerful drag flick made it 2-0.
Oh, bilkul! Deepika! Adbhut goal hai ye aapka!
Is cheez ki hum log baat kar rahe the ki jo direct flick hai.
Surma hunted in packs to get back into the game but to no avail as the Pipers clung on for the win. Delhi remained bottom of the table and Surma on top, but things have become tighter with the result. Today, in a blockbuster doubleheader in the men's segment in Ranchi, the Hyderabad Tufans face table toppers Tamil Nadu Dragons, while Go Nasika take on the UP Rudras in a later match. The women get a deserved break. This is Shaurya Chaudhary reporting for Akashvani News.
And now it's time for the Metro News section.
जिसके लिए मैं बहुत excited थी.
Yes, let's start with the news from Chennai.
जी.
Greater Chennai Corporation or GCC collected 5,400 tons of debris across the city last week. That's quite a whopping number. And if you're wondering ki itna zyada debris, itna malba jo shahar mein kaise ikhatta ho gaya, well, just to give you a backdrop, that the contractor signed for 8 years in 2020 to collect the debris from all 15 zones was a ton each day. Oh. However, they did not proceed with the work as GCC did not release funds due to poor quality of work, and as a result the court cases got in the way of debris collection till now. But last week jo फिर से मुहिम चलाएगी वो सारा मलबा हटाने की शहर से, उसके लिए 49 व्हीकल्स वर प्रेस्ड इनटू सर्विस टू कलेक्ट द डेब्री फ्रॉम 7 जोन्स।
चलिए अच्छी पहल है।
यस एंड देर आर दुरुस्त है कह सकते
हैं। जी बिल्कुल।
द सिविक कॉर्पोरेशन विल रेनोवेट 300 ऑफ द 392 अम्मा कैंटीन्स एट अ कॉस्ट ऑफ 20 करोड़ रुपीज। टेंडर्स हैव बीन फाइनलाइज्ड टू कैरी आउट द रिफर्बिशमेंट्स अक्रॉस द नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथ जोन्स। The subsidized canteens, inaugurated in the year 2013 by late Chief Minister Jayalalitha, offer low-cost meals. Moving on, IIT Madras and CMC Vellore researchers have developed a cost-effective and portable plug-and-train robot for hand rehabilitation. Called Pluto, this device technology was licensed through Technology Transfer Office, TTO-ICSR, and commercialized by Thriv Rehab Solutions. It addresses a gap in the current rehabilitation market. This device is well positioned to meet the growing demand for affordable and adaptable rehabilitation solutions in clinical and home settings. It has already benefited more than 1,000 patients in the last 4 years. This technology offers precise therapeutic movements and real-time feedback, ensuring better outcomes for patients with conditions such as stroke, spinal cord injury, multiple sclerosis, Parkinson's disease, and post-hand surgery, among others. So very good move over there. और अगला शहर आप बताइए.
दिल्ली से मेरे पास तीन खबरें हैं. राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में किया जाएगा. ये कार्यक्रम पहले सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लॉक, जिला, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर आयोजित किया गया था. इसमें 40,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और मनोरंजक और शैक्षिक प्रारूप में रचनात्मक विज्ञान नाटकों का प्रदर्शन किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण से लेकर चिकित्सा क्षेत्र में हुई उपलब्धियों तक के विषय शामिल थे. 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विषयों में विज्ञान को शामिल करना है. और इलेक्शन का मौसम है. 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा की नामांकन प्रक्रिया कल 1,000 से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन भरने के साथ समाप्त हो गई. नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन भाजपा की शिखा राय और नीरज बसोया ने कल अपना नामांकन पत्र भरा. अन्य उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी के अवध ओझा, राखी बिडलान और वंदना कुमारी ने भी अपने नामांकन पत्र भरे हैं. सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं. और एक और आखिरी खबर दिल्ली से है. उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने 140 साल पुरानी हस्तचालित क्रेन को सफलतापूर्वक ठीक करके भारतीय क्रेन की धरोहर के स्मृति चिन्ह के रूप में शामिल किया. रेलवे ने बताया कि इस क्रेन की पुनः बहाली एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही, जिसे मात्र 3 दिन में पूरा कर लिया गया. ये क्रेन 1885 में बनाई गई थी और इसे पहली बार अवध और रोहिलखंड रेलवे में उपयोग किया गया था.
Very interesting news. And moving on to Bengaluru, the US consulate in Chennai has said in a statement issued to the media that Bengaluru is a center for US-India innovation cooperation under the initiative for critical and emerging technologies. Bengaluru hosts nearly 700 US companies and startups. Since 2023, the US International Development Finance Corporation has announced over $130 million loans and equity investments to Bengaluru-based companies. Faculty and student exchange programs are announced for Indian Institute of Science and IIM Bangalore, IIT Dharwar, the Manipal Academy of Higher Education in Manipal, the National Institute of Technology in Suratkal, and the Christ deemed to be university in Bengaluru. The US-India Business Council AI Task Force and Boeing STEM Program for Women in India have supported innovation and entrepreneurship. The NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, NISAR mission, is a joint US-India space project to be launched soon. US is participating in the biennial Aero India Air Show and Aviation Exhibition in Bengaluru next month.
मेरे पास जो मुंबई से खबर है वो ये है कि रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा खाते, सुरक्षित अभिरक्षा लेख और सुरक्षा लॉकर रखने वाले सभी मौजूदा और नए ग्राहकों को मामले में नामांकन प्राप्त करने की आवश्यकता दोहराई है. शुक्रवार को जारी अधिसूचना में आरबीआई ने बैंक बोर्ड के ग्राहक सेवा समिति से समीक्षा करने को कहा है. नामांकन कवरेज को समय समय पर पूरा किया जाना चाहिए. 31 मार्च 2025 से शुरू होने वाले तिमाही आधार पर आरबीआई के दक्ष पोर्टल पर प्रगति की रिपोर्ट भी देनी होगी. आरबीआई ने बैंकों से विभिन्न मीडिया के माध्यम से नामांकन सुविधा का उपयोग करने के लाभों का प्रचार करने को कहा है. नामांकन सुविधा का उपयोग करने के लिए मौजूदा ग्राहकों को सीधे सूचित करते हुए बैंकों के खाता खोलने के फॉर्म का संशोधित करने के लिए कहा गया है, जिसमें ग्राहकों को इसका लाभ उठाने या इससे बाहर निकलने का विकल्प देने का प्रावधान है.
Moving on to Hyderabad, the Telangana state government has signed an MOU with Singapore's Institute of Technical Education, ITE, to strengthen the state's skill development initiatives. The Telangana delegation, led by Chief Minister Revanth Reddy, includes IT Minister D. Sridhar Babu, Industries Principal Secretary Jayesh Ranjan, and Young India Skill University Vice Chancellor VLVS Subbarao, among others. The state delegation visited ITE's campus in Singapore to explore its state-of-the-art skill development programs and training facilities. An official release stated that the delegation interacted with experts in 20 domains, gaining insights into the programs that have positioned ITE as a leader in technical education.
और कोलकाता से एक खबर मेरे पास ये है कि कल से कोलकाता में 7वां राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव शुरू हो रहा है. महोत्सव का उद्घाटन मधुसूचन मंच पर शाम को होगा. ये महोत्सव 26 जनवरी तक चलेगा. पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग विभाग ने मिनर्वा नाट्य सांस्कृतिक चर्चा केंद्र के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कोलकाता में गिरीश मंच, मधुसूचन मंच और अन्य स्थानों पर विभिन्न भाषाओं के नाट्य मंचन किए जाएंगे। इस साल महोत्सव में पश्चिम बंगाल से 7 नाट्य दल और अन्य राज्यों से 10 नाट्य दल भाग ले रहे हैं। और अब प्रमुख महानगरों के मौसम का जिक्र कर लेते हैं। सायरा, दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
And if you talk about Chennai, Bangalore and Hyderabad, all these three cities will have a cloudy sky today. In Chennai, there's a possibility of moderate rain or thunderstorm as well. The temperature in Chennai will hover between 23 and 30 degrees Celsius, while in Bengaluru, some mist is expected in the early hours of the morning, and temperature in Bengaluru will hover between 17 and 26 degrees Celsius, while Hyderabad, along with the cloudy sky, some haze is also expected, and temperature in Hyderabad though, will be 16 degrees Celsius, the minimum temperature, and maximum will be 28 degrees Celsius.
Aur ab 18 January ko talashte hain itihas ke panno mein, jahan 1870 को हेनरी मोर्गन ने पनामा पर कब्जा किया था।
On this day in 1778, English explorer and naval captain James Cook became the first European to discover the Hawaii Islands. In 1871, the German Empire was founded and Wilhelm I was proclaimed Kaiser Wilhelm after the end of the Franco-Prussian War. In 1886, modern field hockey was born with the formation of the Hockey Association in England.
1896 में एक्स-रे मशीन का पहला प्रदर्शन किया गया।
Yes, it was exhibited by Henry Louis Smith. And also in 1911, American pilot Eugene Ely performed the first aircraft landing on a ship's flight deck on the battleship Pennsylvania. In 1919, the Paris Peace Conference began in Versailles in France to formally end the Second World War. And in the same year, the iconic luxury automobile company Bentley Motors Limited was founded in London by Walter Owen Bentley. In 1927, the Old Parliament House of India was inaugurated by Viceroy Lord Irwin. It was designed by British architect Sir Edwin Lutyens and Sir Herbert Baker.
18 January 1930 को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की यात्रा की थी। 1951 को आज के दिन नेदरलैंड्स में झूठ पकड़ने वाली मशीन का पहली बार इस्तेमाल हुआ।
And in the year 1958, Willie O'Ree became the first black athlete to play in a National Hockey League game when he debuted with the Boston Bruins against the Montreal Canadiens.
1960 में अमेरिका और जापान ने संयुक्त रक्षा समझौता किया। 1962 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया। 1989 में चेकोस्लोवाकिया में लाखों लोगों ने आजादी, सच्चाई और मानवाधिकार के समर्थन में प्रदर्शन किया।
And on this day in 1993, Martin Luther King Jr. Day was officially observed for the first time as a national holiday in the US, and the domain yahoo.com was registered in the year 1995.
जी, और अब आ जाते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जहां पुण्यतिथि है सादत हसन मंटो की, जो एक मशहूर कहानीकार और लेखक थे। मंटो फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार भी थे। मंटो की कहानियों की बीते दशक में जितनी भी चर्चा हुई है, उतनी शायद उर्दू और हिंदी और शायद दुनिया की किसी भाषा के कहानीकारों की कम ही हुई होगी। सायरा, आंतोन चेखव के बाद मंटो ही थे जिन्होंने अपनी कहानियों के दम पर अपनी ऐसी जगह बनाई जो आज तक कायम है। मंटो के 19 साल के साहित्यिक जीवन से 230 कहानियां, 67 रेडियो नाटक, 22 शब्द चित्र और 70 लेख मिले। 18 जनवरी 1955 में मंटो ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
Yes, and in fact, when he was charged with the obscenity, तो जज ने उनसे कहा था कि आपके लेखन में बहुत गंदगी है, तो कहेंगे आप साफ कर दीजिए, मैं लिखना बंद कर दूंगा क्योंकि उनका कहना था कि हमारे समाज में ही हम लोग ने इतनी गंदगी फैला दी है, तो मैं उसी को ही लिखता हूँ। सो इंडीड अ वेरी गिफ्टेड राइटर, एंड ऑफकोर्स वी कैन कॉल हिम अ मैवरिक इन हिज ओन राइट। वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग अनदर लिटरेचर टूडे, द ग्रेट पोएट हरिवंश राय बच्चन। वेल, नई कविता का जो लिटरी मूवमेंट था उसकी 20वीं सदी में हिंदी लिटरेचर में हरिवंश राय बच्चन की बहुत अहम भूमिका रही. ही वॉज अ पोएट ऑफ द हिंदी कवि सम्मेलन ऑल्सो नोन फॉर हिज अर्ली वर्क मधुशाला.
एंड सबसे ज्यादा उनकी जो प्रसिद्धि है वो इसी कृति के लिए है.
यस एब्सोल्युटली. इन द ईयर 1976 ही रिसीव द पद्म भूषण फॉर हिज सर्विस टू हिंदी लिटरेचर. एंड भले ही मधुशाला तो अपने आप में खैर है ही बहुत ही लाजवाब कविता, लेकिन मेरे दिल के करीब जो पोएम उनकी रही वो थी जो बीत गई सो बात गई. उसकी चंद पंक्तियां अगर इजाजत हो हम पढ़ते हैं.
बिल्कुल जी.
जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था. वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो. कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे. जो छूट गए फिर कहां मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है. जो बीत गई सो बात गई.
आपने इनके पद्म भूषण की तरफ जिक्र किया. 1968 में उनकी कृति दो चट्टाने के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से, एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया. और उनके आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान भी दिया गया. और सबसे मजेदार बात यह है कि हिंदी के इतने जाने माने लेखक अंग्रेजी के टीचर रहे, अंग्रेजी पढ़ाने का उन्होंने एक लंबे अरसे तक काम किया.
Yes, and now the other name that is on our list is of a very, very, very renowned singer of yesteryears. In fact, चाहे रफी हो चाहे मुकेश हो, हर कोई उनको जो है idolize करते थे.
बिल्कुल.
And we are talking about KL Sehgal और कुंदन लाल सहगल.
जी, बेमिसाल गायक के रूप में उनकी छवि है. देवदास जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया और अपने अभिनय के साथ साथ अपनी गायकी के बल पर अपने दर्शकों और अपने श्रोताओं के दिलों में ऐसी जगह बनाई. 1930 और 40 के दशक की जो फिल्में हैं वो ऐसी फिल्में रहीं कि जिनकी वजह से आज भी लोग उन्हें याद करते हैं. और एक उनकी लोकप्रियता का एक जमाना वो था कि जब भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा रेडियो सीलन कई साल तक हर सुबह 7:57 पर इस गायक का गीत बजाता था. सहगल की आवाज लोगों की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी.
क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया.
आज ही पुण्यतिथि है दुलारी की. भारतीय सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री थी दुलारी. हिंदी सिनेमा में मां का जिक्र आते ही दुर्गा खोटे, ललिता पवार, लीला चिटनिस, निरूपा रॉय, कामिनी कौशल और सुलोचना जैसी अभिनेत्रियों के चेहरे जहन में घूमने लगते हैं. उनमें से एक नाम दुलारी का भी है.
घर में जो पका पड़ा है वो कौन खाएगा?
हाँ, कौन
नाटक करने के लिए बहरूपिया करेगा? सारी दुनिया का ठेका ले रखा है.
अरे माँ, मैं क्या करूँ, तुम्हें तो क्या करती हो. जियो तो सबके लिए, मरो तो सबके लिए.
मरे तेरे दुश्मन, खबरदार जो फिर कभी ऐसी बात मुंह से निकाली. अब तो मैं तेरे पाँव में बेड़ी डाल ही देती हूँ.
और सिर्फ माँ के रूप में ही नहीं, इन्होंने नायिका के रूप में भी बहुत काम किया. और एक बहुत ही मशहूर गीत हम सुनवा रहे हैं जो दुलारी पर ही पिक्चराइज्ड है. और आज ही पुण्यतिथि है रुडियार्ड किपलिंग की. ब्रिटिश लेखक और कवि, औपनिवेशिक काल में भारत के मुंबई में जन्मे किपलिंग को मुख्य रूप से उनकी पुस्तक द जंगल बुक के लिए जाना जाता है. इसके अलावा किम, द मैन हु वुड बी किंग और उनकी कविताएं जिनमें मंडाले, गंगा दीन और इफ शामिल है, उसके लिए भी उनको जाना जाता है. और जंगल बुक के लिए तो सभी छोटे बड़े भारत में उनको पहचानते ही हैं. इस गीत को सुनिए और याद कीजिए.
Today is the birthday of Minisha Lamba, who has appeared in a few films, but nonetheless her acting was quite you can say unko sarhaya gaya.
But ye badi se hi apni dilli se hi thi.
Absolutely. And ek bada khoobsurat sa gana unpe filmaya gaya. Let's listen to that.
Rakh saaya ni jeeve
ये गीत पूरा सुनने को दिल कर रहा था लेकिन वक्त नहीं है। इजाजत दीजिए नईम अख्तर और सायरा मुस्तफा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ ग्रेट वीकेंड। नमस्कार।